कल तक हमने इस विषय तक पढ़ा कि भगवद गीता का जो प्रथम ज्ञान है हमारी आइडेंटिटी के बारे में है। तो पुनरावृत्ति करेंगे जैसे हर रोज करते हैं। तो वैज्ञानिक गण, आधुनिक वैज्ञानिक गण मानते हैं कि केवल जड़ पदार्थ आपस में कंबाइन करके वही चेतना का काम करती है, आत्मा नहीं है। तो इसको कैसे हम गलत सिद्ध कर सकते हैं कि वैज्ञानिकों की ये विचारधारा गलत है। कौन बताएंगे कि हम केवल जड़ पदार्थ, जैसे सेल होता है, सेल ऐसे ही हम लोग एक सेल की तरह से हैं। जब सेल खत्म हो गया तब मर जाते हैं और कोई आत्मा नहीं है, हम केवल जड़ पदार्थ ही हैं बस। हम रोबोट्स नहीं हैं। क्यों नहीं है? रोबोट्स में हमने क्या अंतर है? फीलिंग्स, परसेप्शन, एग्जैक्टली हम लोग परसीव कर रहे हैं। मशीन्स परसीव नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने में और परसीव करने में अंतर है। भगवत गीता में भगवान किस तरह समझाए हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, किस उदाहरण के साथ समझाए हैं? कौन बताएंगे? आप लोग अपनी कॉलेज क्लास में ऐसे डर रहते हैं क्या? या वहां कोई क्वेश्चन पूछता नहीं आपसे? हमारे यहां तो बड़ा बोरिंग होता था। आफ्टरनून टाइम होता था, एक घंटे का क्लास, तो सोने के लिए आते थे हम लोग। कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख देते, वेरी बोरिंग क्लासेस। तो लगता है आपके यहाँ भी क्लासेस बहुत बोरिंग होती हैं, ऐसे है क्या? दे आर लाइवली, यू इंटरेक्ट विद द टीचर्स। तो यहाँ पर आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, समझ में नहीं आता कुछ, जाके आप लोग उसको कुछ सोचते हैं उसके ऊपर? जो आपके कॉलेज में कुछ ले आते हैं नोट वगैरह, नोटबुक कुछ? यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा ला सकते हैं, या कम से कम यहाँ से जाने के बाद क्या सुना है उसको थोड़ा लिखिए, उसको थोड़ा विचार कीजिए। ऐसा नहीं क्योंकि इससे तो कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं, इससे तो कुछ जॉब मिलने वाला नहीं, ये तो बस इस कान से सुन करके इस कान से निकालने के लिए, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूरा एक घंटा हम लोग डिस्कस करते हैं, डेढ़ घंटा, और फिर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग ऐसे ही सितारे देखते हैं जैसे कुछ सुनाई नहीं कल। यस, नहीं अभी दूसरा प्रश्न आ गया, प्रश्न दूसरा आ चुका अभी इसके बाद। प्रश्न ये है अभी कि भगवान भगवद्गीता में किस उदाहरण से समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है? यस, आपने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने कल बताया था। जिंदगी बदलती है फिर भी शरीर बदलता है, लेकिन हम वही रहते हैं, याद आया? तो ये विषय महत्वपूर्ण है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। क्या ये जान लेने मात्र से काफी है? वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं वो कौन से प्लेट, कौन सी समझ में कर रहे हैं? अब आप सब लोग जानते हैं कि हम शरीर, पहले से भी जानते थे, यहां आने से पहले से, ये डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स से पहले भी आप जानते थे कि आप शरीर नहीं हम आत्मा है। तो तब में और अभी जब आपने कल का क्लास सुना, उन दोनों में कुछ अंतर हुआ क्या? आपको कल विशेष बात पता लगी कि मात्र जान लेने से नहीं, लेकिन उसके अलावा हो क्या रहा है? वो शरीर हम नहीं है, लेकिन अभी वो शरीर का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, मान लिया शरीर नहीं है हम आत्मा है, ओके, सुन लिया और चले गए, वही कोई काम कर रहे हैं, सही है ऐसे काम करते रहना। क्या महत्व है इस बात को जानने का कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। जान तो लिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग दिस दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। क्या महत्व है आपके जीवन में इस विषय को जानने का कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं? कौन बताएंगे? वी हैव ऑलरेडी अटेंडेड मेनी क्लासेस, वी एक्सपेक्ट सम न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर। अक्षय हैज ऑलरेडी आंसर्ड वन और यस। एक माइक और है क्या? हाँ जी, वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, ओके। और वर्तमान में जो हम अपनी आइडेंटिटी को सोच रहे हैं उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हमारे इस समय हमारे शरीर का हमारे पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? जब आपसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं शरीर के अनुसार। हमने कल आपको बताया था कि एक कुत्ता जो है वो सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूं, जबकि वो कुत्ता नहीं है। एक मनुष्य सोच रहा है कि मनुष्य हूं या पुरुष हूं, स्त्री हूं, वो भी नहीं है। ये सब फॉल्स आइडेंटिटी है। ये जो सुख और दुख, ये सब जो अलग अलग एम्स बना के रखे हुए हैं हमने, एम ऑफ लाइफ, तो वो हमारी आइडेंटिटी गलत है। हम अपने शरीर की आइडेंटिटी के अनुसार अपना ये लक्ष्य बनाए हुए हैं। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? परम लक्ष्य क्या है? अभी ये कोर्स को छोड़ दो, इससे पहले पहले से आपके परमात्मा को बना था। अच्छा, आप उसके लिए क्या कर रहे थे अभी तक? इससे आने से पहले आप कुछ किए उसके लिए प्रयास? हाँ जी, सत्य को जान रहे थे और यहां कॉलेज में आप एडमिशन लिए क्या? क्या सोच करके लिए? पैसे कमाने के लिए। किस लिए? पैसा कमा के क्या करेंगे? माँ बाप को, माँ बाप के लिए और अपने लिए? अपने लिए कुछ नहीं। हाँ तो सामान्यतः हर व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो अपना इंद्रिय भोग हो या अपने परिवारजनों का इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग को समझते हैं आप? क्या मतलब इंद्रिय भोग का? पास के पीछे जो बैठे बताएंगे, इंद्रिय भोग से मतलब क्या है? यस, खुद को हाँ अपने सेंसेस को कैसे हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं सेंसेस को। तो कौन कौन सेंसेस है हमारी? अक्षय के नेक्स्ट, आंख का क्या आनंद है? देखने का, सुंदर चीज देखने का, या सुंदर क्या, बकवास चीज भी देखने का। यू गो टू इंटरनेट, ओके, देन सेक्स एंजॉयमेंट, सेक्स एंजॉयमेंट इज दिस टच सेंसेशन, नथिंग एल्स। देन खाने का, देन नाक। तो हर व्यक्ति या साधारणतया वो जीवन में क्या किस लिए प्रयास कर रहा है कि अपनी इन इंद्रियों को, और इसके ऊपर फिर एक मन है। तो मन के आनंद क्या है, मन के स्तर पे क्या एंजॉयमेंट है? ये तो इंद्रियों के स्तर पे हो गए, दैट इज ऑल्सो वो माइंड में परसीव किया था, दैट्स ओके, लेकिन कुछ आनंद है जो केवल मन के स्तर पे ही एंजॉय किए जाते हैं। यस वेरी गुड, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, स्टेटस इन द सोसाइटी, ये किस स्तर पे आनंद देते हैं हम लोग? मन के स्तर पे। देन भक्ति, भक्ति इज नॉट एट द लेवल ऑफ माइंड, भक्ति इज एट द लेवल ऑफ सोल। भक्ति मन के स्तर पे नहीं, मन भौतिक है। ईगो, अहंकार, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मेरी सब प्रतिष्ठा हो। तो ये फिर बुद्धि के स्तर पे कुछ हम आनंद लेते हैं। यस, और अचीवमेंट और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, बुद्धि, साइंटिस्ट खाना ही भूल जाते हैं लेकिन उनको बहुत मजा आता है उसमें, रिडल्स सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, दिमाग को लगाना। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति साधारणतया इंद्रिय भोग में लगा है, चाहे वो स्थूल हो, स्थूल मीन्स ग्रॉस, ग्रॉस इंद्रिय भोग, जैसे उन्होंने बताया पांच जो हमारी ग्रॉस सेंसेस हैं, स्थूल इंद्रिया हैं, उनसे जो हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रोटोटाइप है सेक्स प्लेजर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द सेंस प्लेजर, बिगनिंग एंड एंड ऑफ ऑल द सेंस प्लेजर, सेक्स प्लेजर, होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेक्स प्लेजर। और यही सूक्ष्म रूप में सेक्स प्लेजर वो प्रतिष्ठा में परिवर्तित होता है, समाज के अंदर मेरा स्टेटस इत्यादि में। तो ये सेंस प्लेजर है, ये बॉडी का है, माइंड भी एक बॉडी का अंग है, हम माइंड से भी अलग हैं, हम इस बॉडी से तो अलग हैं ही, हम इस माइंड से भी अलग हैं। इसलिए पूरा संसार एक भ्रम में जी रहा है, अंडर इल्यूजन। अगर आप अपनी ड्रेस को आयन करते हैं और पहनते हैं और फिर कल को धोके और फिर आयन करके फिर पहनते हैं और खाते नहीं हैं, केवल ड्रेस आयन करके अच्छा डेकोरेशन करते हैं बाहर, उससे आप कभी संतुष्ट हो पाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे और केवल अपनी ड्रेस अच्छा डेकोरेट करेंगे तो संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि आप ड्रेस नहीं हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी एक लोग क्या करते हैं, जब कोई डेड हो जाता है तो डेड बॉडी को डेकोरेट करते हैं, उसको निधाते हैं, फिर उसके ऊपर वो कपड़े बनाते हैं नए, फिर उसको आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो क्या वो डेड बॉडी को अलंकार करने से, उसको डेकोरेट करने से किसी को कोई फायदा होता है? इट इज जस्ट डेड बॉडी, अभी थोड़े समय में जलाई दी जाने वाली है। उस डेड बॉडी को अलंकार करने से वो जो आत्मा है ना, तो उसको कुछ लाभ है वहां? वो वहां ऑलरेडी चली जा चुकी है, किसी को कोई लाभ नहीं। तो आज पूरा संसार, ये जो आप देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। द होल एंडेवर इज सिंपली डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। ये श्रीमद् भागवतम का वचन है। This body is always dead, correct? Now also it is dead. It is appearing living because of the soul inside. आत्मा के अंदर होने की वजह से life दिख रही है, otherwise body is always dead. Because body is made up of what? किस चीज की बनी है हमारा शरीर? किस चीज का बना है? पांच तत्व, yes, yes, earth, water, है फायर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये डेड है ना, ये मटेरियल, ये सब जड़ है ना, डेड है ना, इन्हीं का हमारा शरीर बना है, अभी भी उन्हीं का बना है, मरने के बाद भी वही आएगा। तो बॉडी तो अभी भी डेड है ना हमारी। तो आप जो इंद्रिय भोग कर रहे हैं, हम सब लोग, वो क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी को डेकोरेट कर रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, खाते हैं, वो सब केवल इस शरीर के लिए है ना। आत्मा का इससे कोई लेना देना है? आत्मा स्पिरिट है और ये सब जड़ पदार्थ, जड़ शरीर है। और जो इसके विषय है, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट, एक सुंदर स्त्री को देखना, वो सुंदर स्त्री क्या है? वो जो बॉडी है वो भी डेड है ना। तो डेकोरेटिंग द डेड बॉडी, और ये है हमारी सिविलाइजेशन, जस्ट डेकोरेटिंग द डेड बॉडी, कंप्लीटली मिसिंग द एसेंस। आत्मा की संतुष्टि किस चीज में है, किसी को कोई पता है? आत्मा है ये भी नहीं पता है, और पता है तो केवल लिप सर्विस, केवल बोलने के लिए पता है आत्मा। हाँ हम पता है, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमको पता है हम आत्मा है, लेकिन कर क्या रहे हो? डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। एक राजा ने एक सोने का पिंजरा खरीदा, एक सुंदर, बहुत सुंदर उसमें चिड़िया के लिए, और अपने नौकरों को दे दिया कि अभी आप इसको संभाल के रखो इस पिंजरे को। तो नौकर मूर्ख थे, तो केवल उस पिंजरे को चमकाते रहे हर रोज, लेकिन अंदर पक्षी को खाना दिया ही नहीं। तो राजा ने कुछ दिन बाद देखा तो पक्षी तो मर गया, तो पूछा भाई क्यों मर गया? तो बोले आपने बोला पिंजरा चमकाओ, हम तो रोज केज को चमका रहे थे और ये मर गए, इसको खाना दिया? वो नहीं, ये तो आपने बोला ही था खाना देने के, आपने बोला पिंजरे को अच्छे से रखना। तो पिंजरे को अच्छे से रखना, पिंजरा किसके लिए खरीदा गया था? पक्षी के लिए खरीदा गया। अगर पक्षी को ही आप नहीं संभाले और पिंजरे को ही चमकाते रहे, तो चाहे वो पिंजरा चमकता हुआ उसका कोई फायदा है भी? तो उसी प्रकार से ये हमारा शरीर आत्मा के लिए पिंजरे की तरह से है ना, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट लाइक योर शर्ट। आप जैसे शर्ट चेंज करते रहते हैं, ऐसे ये शरीर चेंज करता रहता है। मन भी उसी का ही एक अंग है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी आर नॉट दिस माइंड, इवन नॉट इवन दिस माइंड, मन बुद्धि अहंकार। भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, भूमि वायु खम मनोबुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये आठ प्रकार की तत्वों से ये भौतिक प्रकृति बनी है। भूमि वायु खम मन बुद्धि अहंकार, आठ। इसमें से तीन जो तत्व हैं वो सूक्ष्म तत्व हैं, सटल, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, और पांच जो एलिमेंट्स हैं वो स्थूल हैं, ग्रॉस हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो वो भी मटेरियल है, माइंड बॉडी एंड इंटेलिजेंस। हम इससे भी अलग हैं, आत्मा इससे भी अलग है। ये आत्मा की दो कवरिंग है। जैसे विंटर सीजन में कई बार आप कोट पहनते हैं, एक शर्ट और उसके ऊपर एक कोट पहनते हैं ना, तो ऐसे ही आत्मा की दो कवरिंग है, दो शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किस किस चीज का बना है बताइए? वेरी गुड। और स्थूल शरीर बना है, ये पांच महाभूत बोलते हैं इसको, मेजर एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स। तो आप सोचिए जरा, कितनी दुर्भाग्य की बात है और कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, पूरा संसार, चाहे वो पीएचडी हो या कुछ भी हो, पढ़े लिखे जितने भी हो, व्हाट इज देयर होल लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड मेंटेनिंग एंड डेकोरेटिंग दिस बॉडी, या तो अपनी बॉडी, या तो अपनी पत्नी और बच्चों की बॉडी, या तो समाज की बॉडी, बट अल्टीमेटली ओनली दिस बॉडी। एम आई राइट और रॉन्ग? एनीबडी, एनी चैलेंज कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं? कोई कह सकता है? हम केवल शरीर की देखभाल करने में लगे, आत्मा के विषय में हमको चिंता ही नहीं कर रहे हैं। जो वास्तव में हम हैं, केवल इस शरीर की, केवल ड्रेस की चिंता कर रहे हैं। ड्रेस को कैसे ठीक से रखना है, ड्रेस को कहीं चोट ना पहुंच जाए, जिम जा रहे हैं, हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये केज है, ये किस लिए है? ये आत्मा के लिए। तो आत्मा को ही भूल जाएंगे और केज की देखभाल करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? ऐसे ही मर जाएंगे, दूसरा केज मिल जाएगा। तो ये हमारा जीवन चलता जा रहा है। तो आज हम इस विषय के ऊपर गहराई से चिंतन करने वाले हैं। प्रकृति के अंदर हम कैसे आए हैं, ये शरीर हमने क्यों धारण करना पड़ा हमको, अगर हम आत्मा हैं तो किस लिए धारण करना पड़ा, भगवान हमारा और प्रकृति का क्या संबंध है, तीनों का इंटरेक्शन क्या है, परमात्मा, आत्मा और ये प्रकृति, समय का क्या योगदान है, कर्म क्या है, कैसे कर्म का नियम क्या है, लॉज ऑफ कर्मा, ये सब महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब बातें तो साइंटिस्ट लोगों के रीच के बिल्कुल बाहर की, और वो तो अभी इस तरफ पहुंचे हैं कि यस देयर सीम्स टू बी अ लिविंग एंटिटी बियॉन्ड दिस फिजिकल, वो इस तक पहुंचे हैं, जो कि आध्यात्म का, शास्त्रों का एबीसीडी बिल्कुल पहली इंस्ट्रक्शन है, वो आज के वैज्ञानिकों की लास्ट इंस्ट्रक्शन, लास्ट पॉइंट है जहां तक वो लोग पहुंचे, अभी भी ढंग से नहीं पहुंचे। तो इसलिए अभी हम शास्त्रों के आधार पर आगे डिस्कशन शुरू करेंगे कि हम आत्मा है वो कैसे शरीर के संपर्क में आ गए, क्यों करके आ गए हम लोग इस शरीर के संपर्क में। तो ये जो भौतिक जगत है जो हम देख रहे हैं, कुछ हद तक देख रहे हैं, सब तो पूरा भौतिक जगत भी नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत सीमित हैं, लेकिन ये जितना भी हमारे समक्ष भौतिक जगत हमें दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, तो शास्त्रों के अनुसार उस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है। पर तस्मात् भाव अन्यत् अव्यक्त व्यक्तात् सनातनः, भगवान श्री कृष्ण उसका जानकारी देते हैं भगवद गीता में। पर तस्मात् इस भौतिक जगत से परे एक और मेरी प्रकृति है जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है। व्यक्त मतलब जो हम देख सकते हैं इस समय, और अव्यक्त जो हम नहीं देख सकते, उन दोनों से परे एक और मेरी प्रकृति है। न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां पर कोई सूरज नहीं है, सूरज के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, न चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता, न अग्नि, वो सेल्फ एफुलजेंट है, स्वयं प्रकाशमान है वो आध्यात्मिक जगत। और यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां इस भौतिक जगत से आप जाने के बाद यदि वहां पहुंच जाए, फिर दोबारा आपको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है, हमारा पूरा आधुनिक ज्ञान या पूरे संसार का ज्ञान केवल ये जड़ पदार्थों तक ही सीमित है। ये आपके जितने कॉलेजेस यहां पर हैं, दे आर डीलिंग विद व्हाट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टू सम एक्सटेंड विद द माइंड, टू सम एक्सटेंड विद द इंटेलिजेंस, दैट्स ऑल। उसके अलावा उनको कोई रीच नहीं है उनकी, और ये पूरा संसार इसमें पीछे है केवल। और ये तो केवल भौतिक जगत का अंश हुआ, लेकिन ये भौतिक जगत समस्त जो सृष्टि है उसका केवल एक वन फोर्थ पार्ट है, थ्री फोर्थ इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जिसको बताया गया वो सनातन है, अव्यक्त व्यक्तात् सनातन। सनातन का मतलब कौन बताएंगे, ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी है, आप ब्लू शर्ट नहीं है, जो सत्य है, करेक्ट। और सत्य का कभी आदि और अंत होता है, जो परम सत्य है जो चीज नहीं। तो सनातन का मतलब है विच ऑलवेज एग्जिस्ट, नो बिगनिंग नो एंड, तो वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये मेटेरियल वर्ल्ड कैसा है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसके विषय में भगवान क्या बोलते हैं, ये भौतिक जगत क्या होता है, बार बार ये मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, और बार बार इसका प्रलय होता है। तो ये जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति जिसकी हम बात कर रहे हैं पांच सब्जेक्ट मैटर में से, तो वो भगवान की एक प्रकृति है। एक होती है शक्ति और एक होता है शक्तिमान। सूरज का प्रकाश और वो कहां से निकला है, सूरज से निकला है, वैसे ही भगवान है क्या, शक्तिमान, और उनकी अनेक शक्तियां हैं जो मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है। एक है बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ गॉड, एक है इंटरनल एनर्जी, अंतरंग शक्ति, और एक है मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं, तीन कैटेगरी हैं शक्तियों की भगवान की। इसमें से जो दो शक्तियां हैं अंतरंग और मार्जिनल, वो उनकी क्वालिटी कैसी है, परा सुपीरियर नेचर, यानी कि वो कॉन्शियस है, वो लाइव है। और जो बहिरंग शक्ति है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो जड़ है, नॉन लिविंग है, अपरा। समझ में आ रहा है? तो कितनी प्रकार की शक्तियां हैं? तीन। तीन में से गुण कितने प्रकार के हैं? दो, परा और अपरा। क्वालिटी दो ही है, परा अपरा। तो जो तीन में से जो दो शक्तियां हैं वो कौन सी क्वालिटी की हैं? परा, दैट मीन्स लिविंग कॉन्शियस। और एक जो है वो कौन सी क्वालिटी की है? अपरा। तो तीनों में से कौन सी शक्ति अपरा है, नॉन लिविंग है, एक्सटर्नल, और कॉन्शियस या परा कौन कौन सी है? इंटरनल एंड मार्जिनल। अभी टेक्निकल देखिए, डिटेल शुरू हुआ अभी। तो ये जो भौतिक जगत जो बना है जड़ पदार्थों का, वो आठ भूमि रपनवायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति, भिन्ना मीन सेपरेटेड एनर्जी ऑफ माइंड, एक्स्ट्रा एनर्जी। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये आठ तत्वों की बनी है। जड़ प्रकृति कितने तत्वों की बनी है? आठ, एट एलिमेंट्स की। लेकिन फिर बताते हैं अपरेमतस्त्वन्यम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धारते जगत। लेकिन इन भिन्न प्रकृति आठ एलिमेंट्स के अलावा अपरयम, उससे बियॉन्ड, उससे परा, अपरयम इतस्तु अन्यम, इनसे अलग अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी एक और प्रकृति के विषय में जानो। विद्धि प्रकृति में पराम, मेरी पराम सुपीरियर। जीव भूता, जीव लिविंग एंटिटी, जीव भूता महाबाहो, अर्जुन के लिए जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा इस जगत का धारण किया जाता है। ये शरीर का धारण कौन कर रहा है? आत्मा। तो आत्मा स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि इससे भौतिक प्रकृति से अलग मेरी एक और प्रकृति है जो जीवों की बनी है। यानी हम सब जो आत्माएं हैं वो सब भगवान की उस प्रकृति की बात हो रही है, अपरयम, जो इस जड़ से अपर सुपीरियर है, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत को धारण किया जाता है। तो जड़ पदार्थ अपने आप से कभी कुछ नहीं कर सकता, हमेशा उसको कोई लिविंग फोर्स पराशक्ति का संपर्क आने से ही वो जड़ पदार्थ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नेवर। एक बहुत अच्छा एयरप्लेन है, एरोड्रम पे खड़ा है, यदि पायलट नहीं होगा तो वो हमेशा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, एक इंच भी नहीं चल सकता, करेक्ट? ये शरीर है, जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चलेगा, शरीर प्रोडक्शन होगा, पसीना बनेगा, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स बनेंगे शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही ये आत्मा यहां से चली गई, नो प्रोडक्शन। पेड़ है, पेड़ के अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियां आती हैं, और जैसे ही पेड़ कट जाता है तो फिर पत्तियां आती हैं उसके ऊपर? नहीं आती। कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ है वो, उसको हमेशा एक लिविंग लिविंग सब्सटेंस, लिविंग जो चीज है उसका संपर्क चाहिए उसको मूव करने के लिए। इसलिए कहा गया ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा इस जगत का धारण किया जाता है। तो आत्मा छोटी है इसलिए वो कुछ हद तक मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसे हम इस शरीर को हिला डुला सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड को जो हिलाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, हवाओं का बहना, सूरज का आना, कॉस्मिक लेवल जो आत्मा के बियॉन्ड है, तो वो भी मैटर है। ये बड़ी पृथ्वी है, अभी पृथ्वी को अपनी ऑर्बिट में उसको घुमाना, ये जो काम है, तो इसके लिए भी लिविंग फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कौन करता है? परमात्मा, द सुप्रीम सोल। लेकिन सोल इज नीडेड, जड़ पदार्थ अपने आप से कहीं नहीं चल सकता। आप किचन में जाए और हल्दी नमक सब्जी सब काट के रख दें और फिर सो जाए और सोचें कि अभी दो घंटे और उसके सब्जी बन जाएगी, हो जाएगा? आपको उसको मिक्स करना पड़ेगा। आप अभी लेबोरेटरी में जाएंगे, केमिकल लेबोरेटरी में, सो यू विल हैव टू मिक्स केमिकल्स, तब उससे कुछ केमिकल बनेगा। जड़ पदार्थ अपने आप से कभी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे इस शरीर को चलाने के लिए एक छोटी आत्मा, ऐसे ये बड़ा शरीर जो है संसार, इसको चलाने के लिए आवश्यकता है परमात्मा। वो हम आगे और डिस्कशन करेंगे उसका। तो ये हुआ बहिरंग शक्ति, दैट इज एक्स्ट्रा एनर्जी, और मार्जिनल एनर्जी यानी जीव। तो जीव जो है यानी आत्मा, वो किस एनर्जी को बिलोंग करते हैं भगवान की तीन शक्तियों में से? एक्सटर्नल, इंटरनल या मार्जिनल? मार्जिनल, मार्जिनल, बीच की। और इन दोनों से अलग एक और एनर्जी है भगवान की, कौन सी? इंटरनल। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, वो होती है इंटरनल एनर्जी। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, उसके विषय भगवान बताए। जो महात्मा है, जो इन तीनों गुणों से भी लांग चुके हैं, मैटर के द्वारा गाइडेड नहीं है, वो लोग इंटरनल एनर्जी में होते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की शक्ति काम करती है वो है इंटरनल एनर्जी। अभी तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? तो हमको मार्जिनल क्यों कहा गया है? हम बीच में हैं, आत्मा जो है वो हम बीच में है। तो हम या तो एक्सटर्नल एनर्जी के कंट्रोल में रहें या तो हम इंटरनल एनर्जी के कंट्रोल में रहें, लेकिन हमें दोनों में से किसी ने एक के कंट्रोल में रहना पड़ता है। हम कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट, वी आर ऑलवेज अंडर कंट्रोल। इसलिए हमको कहा गया मार्जिनल, बीच में है। वर्तमान में हम कौन सी शक्ति कंट्रोल में है? कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड, यू वुड लाइक टू टेल। यस, वर्तमान में हम कौन सी शक्ति का कंट्रोल में है, इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। हमने कल आपको बताया कैसे हम तीनों गुणों से द्वारा संचालित हो रहे हैं। यहां पर कोई स्टूडेंट है जो कहेंगे कि हम वी आर नॉट कंट्रोल, वी आर फ्री, नोबडी इज कंट्रोलिंग अस, एनीबडी कैन टेल, और मे बी नॉट यू, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु इज नॉट कंट्रोल्ड, हु इज फ्री, इंडिपेंडेंट? कोई भी है क्या ऐसा? एवरीबडी इज कंट्रोल्ड, एवरी साइंटिस्ट इज कंट्रोल्ड, एवरी बिजनेसमैन इज कंट्रोल्ड, एवरी पॉलिटिशियन इज कंट्रोल्ड, एवरी ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड, एवरी एनिमल इज कंट्रोल्ड, एवरीबडी इज कंट्रोल्ड। इसमें किसी को शक नहीं। हमको जन्म लेना पड़ता है, हमको बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है, मरना पड़ता है, इस पर हमारा कंट्रोल है किसी का? ये तो मेजर चीजें हैं, उसके अलावा भी हर समय हर क्षण न जाने कितनी चीज हमको फोर्स करती हैं। वेग, इच्छाएं, तीनों गुण हमने कल देखा, तमोगुण रजोगुण सतोगुण कैसे हमको चला रहे हैं, कठपुतली को जैसे चलाते हैं तीन रस्सियां, ऐसे हम लोग पूरी तरीके से टाइटली कंट्रोल्ड हैं। तो ये हमारी स्थिति है, वर्तमान में हम लोग मेटीरियल एनर्जी द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो आत्मा वैसे तो हम है सुपीरियर नेचर के, हमने डिस्कस किया। आत्मा चेतन है कि जड़ है? चेतन समझते हैं, चेतन मीन्स लिविंग, जड़ मीन्स डेड। तो आत्मा चेतन है, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है इस समय? जड़। दैट इज द इनकंपैटिबिलिटी, ये है इनकंपैटिबिलिटी, मीन्स असमंजस्य, मैचिंग नहीं हो रहा है। जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं, मिसमैचिंग, आदमी मर जाता है। इस समय हम सब लोग ऐसे ही एक मिसमैचिंग में से गुजर रहे हैं कि है तो हम चेतन, लेकिन गवर्न्ड कंट्रोल्ड बाय जड़। है तो हम लिविंग, आनंद ढूंढ रहे हैं जड़ में, और आनंद ढूंढने के कारण उस जड़ के द्वारा कंट्रोल भी हो रहे हैं। आदमी जब सिगरेट पीना शुरू करता है, कॉलेज में एंटर होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सो देन दे इंस्टिगेट, अरे भाई कॉलेज लाइफ है, मतलब यू शुड स्मोक, नहीं तो तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं चलाओगे. सो देन ही थिंक्स ओके लेट मी ट्राई लेट मी एंजॉय दिस सिगरेट और मैं थोड़ा इससे कोई कंट्रोल होने वाला हूँ, जस्ट सिगरेट, आई कैन एनी टाइम थ्रो इट. फिर वो पीना शुरू करता है, एक पीता है, दो पीता है हर दिन, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीते पीते क्या हो जाता है, पियक्कड़ हो जाता है. देन ही बिकम्स एडिक्टेड. पहले वो सोचा था कि वो सिगरेट को कंट्रोल कर रहा है, ही इज एंजॉइंग सिगरेट, बट नाउ ही कैनॉट लिव विदाउट सिगरेट. उसका गुलाम बन गया ना, बीड़ी गुलाम बन गया, सिगरेट गुलाम. नाउ ही कैनॉट लिव विदाउट सिगरेट. या शराब, ड्रग एडिक्शन होता है ना, शुरू में उसने उसको एंजॉय करने का सोचा, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ही बिकेम कंट्रोल्ड बाय दैट. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस. हम लोग इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए प्रयास करते हैं, इन टर्न वी बिकम कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय मैटर. जड़ पदार्थ के द्वारा पूरी तरीके से हम वश में आ जाते हैं, तीनों गुणों के द्वारा वश में आ जाते हैं. तो अभी देखिए, एक कुत्ता है वो विवश है कुत्ते की तरह से काम करने के लिए. मनुष्य जो नेचर है, आप देखते हैं सबके प्रभाव, गुण के प्रभाव कितने विवश करते हैं. तो ये बताए गए हैं विवश करना, तो इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं. वेग मतलब फोर्सेस, इंपल्सेस, जो हम सब अनुभव कर रहे हैं. हर एक अपने अपने इंद्रिय का अपना अपना एक इंपल्स फोर्स है. जीवा, इट डिक्टेट, गो आई वॉन्ट नाइस थिंग्स, गो गेट इट. आप जाते हैं खाना शुरू करते हैं, आपकी जीवा डिमांड करती है, और चाहिए मुझे, और गुलाब जामुन चाहिए, और चाहिए. आपकी बुद्धि बोलती है नहीं भाई, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी जीवा बोलती है नो, यू मस्ट गिव मी. फिर तीन दिन के लिए खराब पेट, बट यू कैनॉट कंट्रोल योर सेल्फ. सिमिलरली टच सेंसेशन, ओ हैवी वेव, यू मस्ट एंजॉय सेक्स लाइफ. मैरिड नहीं है तो मैरिड से पहले देर आर सो मेनी अननेचुरल वेज, इलिसिट वेज, यू आर फोर्स्ड. इवन इफ यू अंडरस्टैंड, आप देखते भी हैं कि दिस इज नॉट गुड, मेरे सब गुण जाते जा रहे हैं, अच्छे गुण, आई एम जस्ट लूजिंग कंट्रोल, आई एम बिकमिंग सर्वेंट, मैं अपनी इंद्रियों का दास बनता जा रहा हूं. आई हैव गॉट नो कंट्रोल माई माइंड, नो कंट्रोल माई सेंसेस. जो मेरी इंद्रिय खुलती है मुझे वो करना पड़ता है. एक चोर देखिए, वो जानता है कि मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा होगी, पकड़ा जाऊंगा, इतना होगा, लेकिन विवश है, ही कैनॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. तो हम सब लोग इस प्रकार से अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं, करेक्ट. हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ है, इसे कहते हैं गोदास. इसके विपरीत एक शब्द है, क्या है, गोस्वामी. गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों का स्वामी बनना. लेकिन सब लोग क्या है, इंद्रियों के दास है. बड़े बड़े लोग, अलेक्जेंडर, कितने, उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य जीता, कितनी शक्ति थी उनके अंदर, लेकिन वो लोग टच सेंसेशन के दास थे, अपने गोदास थे. तो पहले विष कन्याएं रखी जाती थी, ऐसी कन्याएं होती थी जिनको जन्म से ही विष पिलाया जाता था, उनकी बॉडी पूरी विषैली जाती थी. अगर वो किसी को भी किस करती थी, ही विल डाई, इतनी विषैली जाती थी. और ये विष कन्याओं को पॉलिटिशियंस यूज करते थे. जब किसी राजा को मरवाना है, क्योंकि वो सब दास है, गोदास है, बड़े बड़े साम्राज्य को जीत सकते हैं, लेकिन विमेन के, स्त्री के सामने दास. सो दे यूज टू यूज दिस विष कन्या, सो दे विल किस एंड यू विल डाई. चैप्टर फिनिश्ड. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी एवरीवन. दे मे बी हैविंग एक्सटर्नली टाई कोट, लुकिंग वेरी जेंटलमैन, बट यू सी देयर इंटरनल लाइफ, दे आर ऑल गो दास. सब अपने इंद्रियों के दास है. तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है कि हम सभी इस बाह्य प्रकृति मेटेरियल एनर्जी के द्वारा कंट्रोल्ड है. एवरी मोमेंट वी आर कंट्रोल्ड. तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, हर आत्मा हर जीव उसका ये नेचर है हमेशा कंट्रोल्ड रहना, इज नेवर इंडिपेंडेंट। केवल हमारे हाथ में चॉइस क्या है, आप एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं या इंटरनल एनर्जी द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं। इंटरनल एनर्जी कंट्रोल क्या है, आध्यात्मिक जगत में इंटरनल एनर्जी कहां पर है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत में क्या कंट्रोल है इंटरनल एनर्जी, कि वहां पर जो जीव है वहां वो भगवान की सेवा करते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रेम से। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो जीव और भगवान के बीच में जो शाश्वत संबंध है उसको फैसिलिटेट करती है। वो नॉर्मल कंडीशन है जीव की, क्योंकि वो परा है। इंटरनल एनर्जी भी सुपीरियर नेचर है, हम भी सुपीरियर नेचर के हैं। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और मेटेरियल एक्टिविटीज, इस भौतिक जगत की एक्टिविटीज में क्या अंतर है, आध्यात्मिक जगत में भी एक्टिविटीज है, फुल ऑफ एक्टिविटीज। वहां पर क्या एक्टिविटीज है, हमारी नेचुरल एक्टिविटीज है, आत्मा और भगवान का सबका नेचुरल एक्टिविटी क्या है, हर हम में से हर व्यक्ति, हर आत्मा, हम सब इंडिविजुअल है फर्स्ट, नॉट दैट एवरीवन इज जस्ट वन, ईच ऑफ वन ऑफ इज हैविंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। हमारा सबका भगवान के साथ एक विशिष्ट रिलेशन है, संबंध है। ये संबंध विशेष रूप से पांच प्रकार के हैं। एक है न्यूट्रल, उदासीन भाव। एक है दास्य भाव, एज ए सर्वेंट, भगवान हमारे स्वामी, इस भावना में हम सेवा करते हैं भगवान की, आध्यात्मिक जगत की बात चल रही। थर्ड, एज ए फ्रेंड, मित्र की तरह से सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं लेकिन थोड़ा सेवा और घनिष्ठ हो जाता है, और इंटीमेट, मोर कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट रिलेशनशिप, एज ए पेरेंट, माता पिता की तरह से सेवा करते हैं भगवान की, भगवान पुत्र के रूप में होते हैं। एंड नेक्स्ट, एज ए हस्बैंड और एज ए लवर। तो ये रिलेशनशिप्स हैं जो हम सबकी इटर्नल है, नित्य रूप से हमारी भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है। भगवान बताएं भगवद गीता में, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। टेक आउट योर हैंड फ्रॉम द माउथ, माउथ इज द डर्टीएस्ट पार्ट इन द बॉडी, डर्टीएस्ट होल इन द बॉडी, ऑल द इन्फेक्शंस आर स्प्रेड फ्रॉम दिस माउथ, यू शुड नेवर पुट अवर फिंगर इन द माउथ। तो ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल। लेकिन कैसे, इटर्नली पार्ट एंड पार्सल। ऐसा नहीं कि जैसे मिट्टी का एक लोथड़ा और उसमें से थोड़ा मिट्टी का भाग कोई अलग हो गया हो और फिर दोबारा उसमें से चिपक जाए, ऐसा नहीं। इटर्नली पार्ट एंड पार्सल भगवान और हम इटर्नली एग्जिस्ट, सनातन रूप से एग्जिस्ट करते हैं। इटर्नली वी एग्जिस्ट, इटर्नली देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सर्विस। ये पांच प्रकार के रिलेशनशिप्स में, न्यूट्रल, सर्वेंट, फ्रेंड, एज ए पेरेंट और एज ए लवर। और जब हम इस स्थिति में रहते हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में जो जीव है, जब हम उस स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो हमारी नेचुरल पोजीशन है, वी आर हैप्पी, सच्चित आनंद, सनातन एग्जिस्टेंस अनुभव करते हैं, ज्ञान और आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कैसे आ जाते हैं, अभी ये प्रश्न है। इंटरनल एनर्जी के प्रभाव से निकलकर एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में क्यों कराते हैं, भौतिक जगत में क्यों कराते हैं आध्यात्मिक जगत से। तो जैसे आप देखे होंगे, कभी कोई कंपनी होती है, कंपनी में कोई मैनेजर होता है, तो कंपनी उसको, मालिक जो है उसको सब कुछ दे रहा है, मैनेजर को, उसको खाने को दे रहा है, उसके परिवार को सब कुछ दे रहा है, एवरीथिंग। लेकिन कभी कभी मैनेजर के मन में इच्छा जागृत जाती है, चलो मैं प्रोप्राइटर बन जाऊं, ऐसी इच्छा जागृत जाती है। हालांकि उसको सब कुछ मिल रहा है, फिर भी कैन डिजायर, व्हाई नॉट बिकम प्रोप्राइटर। तो जब जीव के अंदर, हम सबके अंदर ये ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूं, क्यों ना मैं खुद स्वामी बन जाऊं, क्यों ना मैं खुद भगवान बनूं, मैं क्यों सेवा करूं, मैं खुद भगवान क्यों नहीं बनूं। जब ये इच्छा हमारे अंदर प्रकट होती है, इच्छा शक्ति हम सबके अंदर है क्योंकि हम जीव हैं, हम जीवित हैं, इसलिए इच्छा शक्ति हमारे सबके अंदर है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान की भी इच्छा शक्ति होती है, भगवान भी जीवित है। ही इज ऑल्सो कॉन्शियस, ही इज ऑल्सो द सुप्रीम पर्सन। हम छोटे हैं, वी आर सिंपल गॉड स्मॉल। तो गुण वही है जो भगवान के अंदर है, लेकिन क्वांटिटी अलग है। जैसे समुद्र में, समुद्र का पानी और समुद्र में से एक बूंद, दोनों में जो क्वालिटी है वो एक ही है ना, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, क्वांटिटी का है। उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश होने के नाते क्वालिटी आर सिमिलर टू दैट ऑफ गॉड, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट। हम अणु हैं, भगवान विभू है। तो भगवान स्वराज है, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, लेकिन हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम निर्भर हैं भगवान के ऊपर। भगवान हम पे निर्भर नहीं है, ही स्वराज, वो जो इच्छा करते हैं दैट विल बी फुलफिल्ड। देयर इज नो वन हु कैन चेक इट, जस्ट बाय डिजायरिंग इट्स ओवर, इट विल बी फुलफिल्ड। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्भर हैं भगवान के ऊपर। ये उपनिषद में बताया गया, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम योग दाती कामा। रिलेशनशिप बताया है हम में और भगवान में, नित्य नित्या नाम, भगवान एक नित्य है, नित्य जीव, हम अनेक नित्य जीव हैं। चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन है, लिविंग है, हम भी चेतन है, लेकिन चेतना नाम प्लूरल। एको बहुनाम, वो एक है और हम मल्टीपल हैं, बहुनाम। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक इन बहु की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो हम सब जो बहु मल्टीपल है, हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो हमारी नेचुरल पोजीशन है, क्योंकि हम अणु हैं, हम छोटे हैं, भगवान के अंश हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा रिलेशन है भगवान की सेवा करना। जैसे अभी हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक कान इत्यादि, तो अंग होने के नाते इनका कर्तव्य है कि ये पूरे शरीर की सेवा करें, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, जो शरीर का हित है उसके लिए कार्य करें, वो इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करेंगे, करना चाहिए। अगर शरीर का कोई भी अंग शरीर के लिए कार्य करना बंद कर देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल हो गया। मान लीजिए हाथ का पैरालिसिस हो गया, नाउ इट इज नो मोर हेल्पिंग द बॉडी, इट इज पैरालाइज्ड। या कभी कभी कोई अंग जो है वो गैंग्रीन हो जाता है, सड़ने लगता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उसको काट देते हैं, अभी बेकार हो गया, नो मोर यूज, जस्ट गिविंग पेन, कट इट, बात है दोस्त। उसी तरीके से हम सब भगवान के अंश होने के नाते हमारा ये ड्यूटी है, हमारा ये रिलेशन है कि हम भगवान की सेवा करें। और जब ये अंग शरीर की सेवा करते हैं तो इन टर्न इन सभी अंगों को स्वाभाविक रूप से पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, करेक्ट। ये हाथ पैर नाक कान इत्यादि सब मिलकर कॉपरेट करते हैं शरीर के लिए, तो इनको सबको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑटोमेटिकली। इनको कोई अपना अलग अलग शेयर नहीं ढूंढना पड़ता कि हाथ को अलग से कुछ अपना खाना खाना पड़े, पैर को अलग से खाना खाना पड़े, नो, सब मिलकर के पेट में खा देते हैं और पेट अपने आप जिसको जितना खाना चाहिए सब जगह पहुंचा देता है। उसी प्रकार ये सब शास्त्र के उदाहरण है, तरोर मूल निशेष नेना यथा तरोर मूल निशेष नेना। जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली वो सभी शाखाओं में, पत्तियों में, फलों में पहुंच जाता है, हमें अलग अलग पानी नहीं छिड़कना पड़ता, और वो अलग अलग छिड़कना बेकार है, हमें जड़ में ही पानी देना पड़ेगा। उसी प्रकार से क्योंकि हम सभी के मूल ओरिजिन जन्मादस्यतः, हम सबका ओरिजिन है भगवान, इसीलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट होते हैं। यह है इक्वेशन। हम में से हर व्यक्ति आनंद की एक इक्वेशन ढूंढ रहा है, वी आर ऑल सर्चिंग फॉर एन इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस, हाउ विल आई बी हैप्पी, हाउ विल आई बी हैप्पी। लेकिन हमारी इक्वेशन क्या है आनंद की, हमारी इक्वेशन क्या है, क्या नहीं, वर्तमान में हमारी इक्वेशन क्या है, यस, अब हमारी इक्वेशन है सेंस एंजॉयमेंट इज इक्वल टू माई हैप्पीनेस। ये हमारी वर्तमान की इक्वेशन है। डू यू एग्री? ये इक्वेशन सही है गलत है? गलत। नो बडी इज हैप्पी, समबडी में बी थिंकिंग सेक्स एंजॉयमेंट विल गिव यू हैप्पीनेस। सो मैन इज हैविंग वंस इन ए डे, बट इज पिजन्स आर हैविंग एंड द मंकीज आर हैविंग मेनी टाइम्स इवन इन ए मिनट, देन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। ह्यूमन बींग राधर अपोजिट इज देयर, जितना इंद्रिय भोग हम करेंगे उतना ही असंतुष्ट होंगे। अपोजिट है ये इक्वेशन, गलत है, बिल्कुल अपोजिट है। जो जितना इंद्रिय भोग में लिप्त होता है वो उतना ही अपने को असंतुष्ट फील करता है, मोर एंड मोर एम्प्टी, ज्यादा उसके पीछे भागता है और उतना ही वो असंतुष्ट अनुभव करता है। वास्तविक इक्वेशन है कृष्णा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू अवर हैप्पीनेस। अगर आप ये इक्वेशन को समझ लें, मेटीरियल ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ कृष्णा इज इक्वल टू अवर प्लेजर इज इंक्लूडेड इन दैट। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जगह हमें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। ये हाथ पैर को अपने आप खाना खाने की जगह पेट को खाना देना है, तो ऑटोमेटिक पोषण होगा। लाइक दैट हम यदि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना सीख लें, सीख लें मतलब वो हमारी नेचुरल पोजिशन है ही, लेकिन उसको भूल गए हैं, उसको रिवाइव कर लें, उसको रिवाइव कर लें, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रति अपनी इच्छा को पुनर्जागृत कर ले, देन यू विल फाइंड दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ द सोल। वो आत्मा की संतुष्टि है, सर्विंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा। सर्व उपाधि, नारद पंचरात्र में बताया है श्लोक, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। सभी उपाधियों से मुक्त होकर के, डेजिग्नेशंस, फॉल्स डेजिग्नेशंस, फॉल्स डेजिग्नेशन समझते हैं, फॉल्स डेजिग्नेशन। अभी हम लोग क्या है, सब एक एक फॉल्स डेजिग्नेशन में जी रहे हैं। आई एम मिस्टर सो एंड सो, दीज आर फॉल्स डेजिग्नेशन। क्यों फॉल्स है? क्योंकि डेजिग्नेशन किसके हैं, हमारे हैं, आत्मा के नहीं, बॉडी के हैं। सो दे आर फॉल्स, दे आर इल्यूजन, दे आर नॉट अवर डेजिग्नेशन, नॉट द ओरिजिनल डेजिग्नेशन, फॉल्स डेजिग्नेशन। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, गिव अप ऑल दिस फॉल्स डेजिग्नेशन। मेटेरियल वर्ल्ड क्या सिखा रहा है, बी मोर अटैच टू दिस फॉल्स डेजिग्नेशन। पैसे वाला बन जाओ तो और ज्यादा आसक्ति, और डेजिग्नेशन, आई एम ए रिच पर्सन, आई एम ए सच एंड सच ग्रेट पर्सन, यानी कि और ज्यादा मिस आइडेंटिफिकेशन करो अपने को, तो और ज्यादा भगवान को भूल जाओ, और ज्यादा अपनी रियलिटी को भूल जाओ कि आप आत्मा है। तो जितना मेटेरियल एडवांसमेंट होता है, दैट मीन्स यू आर मोर अंडर इल्यूजन, यू फॉरगेट मोर योर सेल्फ, यू आर मोर ड्रीमिंग, मोर डीप ड्रीम दैट आई एम सच अ सच बिग पर्सन, आई एम हैप्पी विद दिस बॉडी प्लेजर, आई विल बिकम हैप्पी, आई एम हैप्पी, लाइक दैट इल्यूजन। तो ये जो इंद्रिय भोग है, एवरीबडी ट्राइंग टू इट, नॉट जस्ट टूडे, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑलवेज। वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर अंडरस्टैंडिंग कि इंद्रिय भोग कभी संतुष्ट नहीं करता है, दे आर गिविंग इट अप, वो उसको उससे बाहर आ रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर थिंकिंग वो घिसा पीटा पाथ, पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम, चबाए हुए को चबाए जा रहे हैं। एक आदमी गन्ना चबा करके फेंक दिया, दूसरा आदमी आया वो चबाए हुए गन्ने को दोबारा उठा के चबा रहा है, उसको फेंक दिया, फिर तीसरा आदमी दोबारा उठा के चबा रहा है, उसमें कोई रस मिलेगा? हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। जो सेक्स प्लेजर हम सोच रहे हैं कि दिस इज अ रियल प्लेजर, सेक्स में कितना आनंद है, हिस्ट्री एवरीवन हैज डन इट, एवरी एनिमल इज डूइंग इट, एवरी बर्ड इज डूइंग इट, कॉकरोच इज डूइंग इट, मस्किटो इज डूइंग इट, हिटलर डिड इट, बिल गेट्स डूइंग इट, प्राइम मिनिस्टर डूइंग इट, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, एवरीबडी इज डूइंग इट। नोबडी कैन फाइंड सेटिस्फेक्शन बाय सेक्स प्लेजर। लेकिन हम सोच रहे हैं, नो, माई सेक्स प्लेजर विल गिव मी सेटिस्फेक्शन। हाउ? Nobody's sex pleasure has given them satisfaction. How your sex pleasure will give you satisfaction? No. मेरा दे पुनः पुनश्चर वही चबाए वो चबाए जा रहे। एक बार सेक्स एंजॉय किया, फ्रस्ट्रेशन, नहीं अगेन 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 पुनः पुनश्चर चर्चा। दिस इज गोइंग ऑन अंडर इल्यूजन, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। और हमको प्रेरित करने के लिए, हमारी होप बनाए रखने के लिए, होप अगेंस्ट होप उसको बनाए रखने के लिए सेक्स मैगजीन्स, डोंट गिव अप, हैव सम न्यूअर वेज ऑफ हैविंग सेक्स, maybe there's some problem with you, have some improved sex guides, see, more illusion. So ye course ka yahi fayda hai that we understand that because we are not this body, this body pleasure to any extent will not give us happiness, rather opposite will be there, it will make us more and more unhappy. ये हमारे इस भौतिक जगत में शरीर के साथ जो मिस आइडेंटिफिकेशन है उसको और ज्यादा जटिल, उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर देता है, इल्यूजन को और ज्यादा बढ़ा देता है। आप सो रहे हैं, सोते हैं और नींद की गोली ले रहे, तो आपकी नींद क्या आती है? और गहरी आती है, करेक्ट। जो व्यक्ति जितना सेंस एंजॉयमेंट में लिप्त होता है उसका जो मिस आइडेंटिफिकेशन है कि आई एम दिस बॉडी, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि भगवान से आत्मा को समझने में और ज्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आज कलयुग में किसी को भगवान के विषय में समझ में नहीं आता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, समझ में नहीं आता है। बोलते हैं भगवान दिखाओ। अरे तुम सारा दिन तो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हो, तुम्हारी तुम क्या भगवान को समझोगे? यू हैव बिकम डन लाइक मैटर, बाई एंजॉइंग मैटर वी एक्चुअली बिकम लाइक मैटर, बाई ट्राइंग टू एंजॉय मैटर वी बिकम लाइक डल, वेरी डल लाइक मैटर, लाइक ए मशीन। Everybody is acting like a machine, that's all. ये सब जो spiritual topics हैं, सब नहीं समझ आते। आम आत्मा है, no, just matter, matter, matter. और शरीर बंधन हमारा चलता जाता है। जितना ज्यादा हम सेंस एंजॉयमेंट में लिप्त होते हैं सोच करके कि सेंस एंजॉयमेंट मेरे को हैप्पी करेगा, हमारी फ्यूचर बर्थ, फ्यूचर शरीर निर्मित होते रहते हैं हमारे माइंड के अंदर, और एक के बाद एक के बाद एक हमको मिलते रहेंगे। वो कर्म बंधन कहते हैं उसको, लॉज ऑफ एक्शन के द्वारा। क्योंकि हमको शरीर क्यों दिया जाता है? तो प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के निर्देश से हमको अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जाते हैं कि जो हम इच्छाएं कर रहे हैं उसको फैसिलिटी देने के लिए, कि ठीक है आप करके देखो, ये एंजॉयमेंट करके देखो। कुत्ते की तरह से जीना है, हाँ कुत्ते का शरीर लेकर देखो। कोई आदमी है तो उसको खूब ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, तो उसको ऐसा शरीर दिया जाएगा जिसमें खूब मांस खा सके, आसानी से खा सके। क्योंकि ह्यूमन बॉडी से अच्छी बॉडी कौन सी है मांस खाने के लिए? बाघ, शेर की बॉडी है। आदमी को तो पकड़ने में झंझट है, उसको काटना पड़ता है, पकाना पड़ता है। शेर को कोई पकाने का झंझट नहीं है, उसके अंदर इतना एसिड है, 10 times more हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, कोई पकाने की जरूरत नहीं है उसको, जस्ट खाए, कच्चा खाए, ओके। तो इफ वी इन ह्यूमन बॉडी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव सम स्ट्रॉन्ग डिजायर, बाई नेचर वी विल बी फैसिलिटेटेड, हमको ऐसी शरीर दिया जाएगा कि यू विल बी एबल टू फुलफिल योर डिजायर। और फिर आपको कर्म भी देखना पड़ेगा दोनों। मान लीजिए इस ह्यूमन बॉडी में किसी की इच्छा है नेता बनने की, जहां जाता है वैसे नेता ही बनता है वो, हाँ नेता, लीडर ऑलवेज। तो लेकिन उसने इस जन्म में कर्म किए हैं बहुत ऐसे कर्म जिससे कि जानवर की होनी मिले। इच्छा है लीडर बनने की और कर्म है जिससे कि जानवर बनने को मिले, तो अगली योनि में उसकी ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? हो सकता है वो कुत्तों का एक समाज ग्रुप का लीडर बन जाए, बिग बुल डॉग, हैवीएस्ट डॉग इन द ग्रुप, लीडर बन गया और कर्म के अनुसार। सो लाइक दिस, दिस वन सिंपल एग्जांपल, इतना सिंपल नहीं होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिस कर्मिक रिएक्शन, बट दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस बॉडी। नहीं तो कैसे अलग अलग शरीर है सबके? एक आदमी अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये सब कर्मिक रिएक्शन की वजह से जो हमारे मन के अंदर एकत्र होते रहते हैं, और फिर प्रकृति जो देवतागण है जो उसको सुपरवाइज करते हैं लॉज को, उनके द्वारा एप्रोप्रिएट बॉडी हमको मिलती है जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अपने कर्मों को भोग सकें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके देख लें। ऐसे हम लोग 84 लाख प्रकार के शरीरों में अलग प्रकार का भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये भोग, इस संसार को भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लॉर्ड ओवर द मेटीरियल नेचर, मेटीरियल नेचर को एंजॉय करो, शोषण करो, अपनी इंद्रियों में लगाओ। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन और एनी सिविलाइजेशन। करेक्ट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू एंजॉय दिस मेटल वर्ल्ड, ये इनके इन प्रकार हैं। तो यदि हम शास्त्र के अनुसार इसको एंजॉय करते हैं दैट इज कॉल्ड पायस, और शास्त्र के विरुद्ध जाय करते हैं दैट इज इम्पायस, आसुरिक। तो आजकल की सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो क्या है? आसुरिक है। भगवान ने सिस्टम बना के दिया है, आपको एंजॉय करने की इच्छा है एंजॉय करो, लेकिन शास्त्र के विधि विधान के अनुसार, अंडर रेगुलेशन, जिससे कि धीरे 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 आपके अंदर वो जो मिसकंसेप्शन है कि मैं एंजॉय करूं, वो कंसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि एकदम से आदमी नहीं छोड़ सकता, जैसे ड्रग एडिक्ट होता है, तो ड्रग एडिक्ट जब आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एकदम से नहीं रोकता है, क्योंकि उसको लत पड़ी हुई है। अगर वो एक दिन में 5 इंजेक्शन लेता है तो एकदम से उसको नहीं रोका जाएगा, डॉक्टर बोलेगा ठीक है आप भर्ती हो जाओ हॉस्पिटल में, और खुद डॉक्टर उसको देगा अभी 3 इंजेक्शन 1 महीने तक, उसके बाद फिर 1 इंजेक्शन। लेकिन उसको देने के पीछे हेतु क्या है? अभी रेगुलेट हो गया, पहले इररेगुलेटेड था, अनरेगुलेटेड था, जब मन में आया जितना, लेकिन अभी अंडर रेगुलेशन हो गया, जिससे कि धीरे 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 कम करके खत्म कर दिया जाए, तो वो ट्रीटमेंट कहलाया। तो ये जो व्यवस्था है कि जब हम मनुष्य योनि में आ जाए तो अभी रेगुलेशन, सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा है दैट इज एक्सेप्टेड, तभी तो यहां है इन द मटेरियल वर्ल्ड, सो इट इज एक्सेप्टेड, यस वी वॉन्ट एंजॉयमेंट। लेकिन शास्त्रों में देखो भगवान ने कितना सुंदर हमारी व्यवस्था करके दिया है, भगवान जानते हैं कि एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं। सो फॉर ह्यूमन बींग, जानवर देयर इज नो स्कोप, जस्ट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट एंजॉय एंड सफर द रिएक्शन, और वो ऑटोमेटिक इवोल्यूशन उनका। ह्यूमन बर्थ में आने पर शास्त्र दिए गए हैं कि नाउ रेगुलेट योर लाइफ अंडर रेगुलेशन, तो अलग अलग प्रकार के विधि विधान बताएंगे। जैसे तो हर जीव के अंदर सेक्स एंजॉयमेंट की इच्छा है, दैट इज ओके, जानवर में भी है, सब में है, तो मनुष्य में भी है। लेकिन मनुष्य के सेंस एंजॉयमेंट, सेक्स एंजॉयमेंट और जानवरों के सेक्स एंजॉयमेंट में क्या अंतर शास्त्रों के द्वारा किया गया है कि मनुष्य में मैरिज, विवाह के द्वारा सेक्स एंजॉयिंग स्पिरिट को, हैबिट को रेगुलेट किया गया। एंजॉय सेक्स बट नॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स विद एनीवन एनी टाइम, नॉट लाइक दैट, अंडर रेगुलेशन। मैरी ए वीमेन, हैव सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन ओनली, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए आप संभोग कीजिए, कुत्ते बिल्ली की तरह से नहीं, एंजॉयमेंट के लिए। तो उसमें एंजॉयमेंट है बट अंडर रेगुलेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लो पत्नी को और बच्चों को पालने की, और न केवल पालने की बल्कि पूरा गृहस्थ आश्रम, कल कोई पूछा था गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, तो सब मिलकर के धीरे धीरे कैसे आध्यात्मिक प्रगति करके इस पूरे भौतिक जो ये सब हमारी गलत भावनाएं हैं, दुर्भावना, इनको छोड़ सके धीरे धीरे रेगुलेट करके, इसलिए वो आश्रम बनाया, गृहस्थ आश्रम बनाया गया। सो अंडर रेगुलेशन ग्रेजुअली हाउ वी गिव इट अप, दैट इज द होल स्कीम। पहले ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग, नो सेक्स लाइफ, परफेक्ट सेलिबेसी। फिर जो लोग आज ही वो नहीं रह सकते हैं ब्रह्मचर्य, ओके, अंडर रेगुलेशन मैरिज, देन आफ्टर सम टाइम अगेन वन ट्रस्ट, अगेन कम आउट ऑफ दिस, नाउ प्रिपेयर फॉर द डेथ, फुल्ली एब्जॉर्व इन डिवोशनल सर्विस एंड देन संन्यास। आउट ऑफ 4 आश्रम, 4 आश्रम में से 3 आश्रम में नो सेक्स, ओनली इन 1 आश्रम देयर इज अलाउड अंडर रेगुलेशन। व्हाट डज इट शो? ह्यूमन लाइफ इज मेड टू रिड्यूस दिस एंजॉइंग स्पिरिट, ये जो हमारे भोग करने की जो इच्छा है इसको रेगुलेट करके धीरे धीरे खत्म, टू कमिट टू ब्रिंग इट टू द प्लेटफॉर्म ऑफ 0, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, दिस इज द होल प्लानिंग। लेकिन आज की सभ्यता में, आसुरी सभ्यता, डीमंस, दे डोंट रिकॉग्नाइज दिस प्लानिंग। तो आज की हमारी एजुकेशन किससे शुरू होती है? नो ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग, नो शास्त्र ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज ओनली हाउ टू इंप्रूव योर सेक्स एंजॉयमेंट, सेल्फ ग्रेटिफिकेटरी ट्रेनिंग, कैसे पैसा कमाना है खूब, और पैसा कमाए क्या करना है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। एम आई रॉन्ग? कैन एनीबडी ऑफ यू से एम आई रॉन्ग? आपको पूरा एटमॉस्फेयर क्या बता रहा है यहां पर टीचर? सबसे ऊंचा जॉब लो, सबसे जिसे पैसा मिले, कितना है? 1 लाख रुपीज पैकेज, 1.5 लाख रुपीज पैकेज, जहां से होना चाहिए, हैव ए बिगर कार, जितनी लंबाई ज्यादा हो, बेस्ट कार, बेस्ट बंगलोज, वो बंगलोज कार में अल्टीमेटली इट ऑल कम्स टू सेंस एंजॉयमेंट एंड द प्रोटोटाइप इज सेक्स एंजॉयमेंट. सो जस्ट सी वी आर बीइंग ड्रिवन कंप्लीटली इन रॉन्ग डायरेक्शन इन हेल. अपने ही पैर से कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग, अपने नरक का द्वार खोल रहे हैं. नरक के तीन द्वार बताए गए हैं, काम क्रोध और लोभ. और आजकल के समाज में क्या हमको इन तीनों चीजों को ही नहीं बढ़ाया जा रहा है? इंटरनेट एंड टीवी क्या प्रोवोकेट करते हैं? काम और लोभ, लोभ ग्रीडीनेस. ये होना चाहिए तुम्हारे पास, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. लोभ, डोंट बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग योर डिजायर्स एंड देन गो टू हेल्प विद दोज मार्केटिंग पीपल. दिस इज द प्लानिंग ऑफ द मेटेरियलिस्टिक पीपल. सो डियर फ्रेंड्स, वी डोंट वॉन्ट यू टू गो टू द हेल्प विद देम. दैट्स वाई वी हैव ऑर्गेनाइज दिस कोर्स. ये नरक के रास्ते मत जाइए, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, ना तो इस जीवन में संतुष्ट होंगे ना तो आने वाले जीवन में. ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारतः, भगवान बोलते हैं जो शास्त्र विधि को छोड़ करके काम के आधार पर काम करता है. लस्ट, ड्रिवन बाय लस्ट हु एक्ट ही न शांति न पराम सुखिम, नाइदर ही गेट पीस इन दिस लाइफ नोर हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट, ही इज डूम्ड. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द लॉर्ड. सो प्लीज वेक अप. ह्यूमन लाइफ इज नॉट मीन फॉर सेंस एंजॉयमेंट, ह्यूमन लाइफ इज मीन फॉर तपस्या. भागवत में एक ऋषभ देव भगवान के एक इंकारनेशन है, उनके 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े थे भरत महाराज, जिनके नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है. ही वॉज अ सम्राट. तो वो अपने सभी बच्चों को बुला करके शिक्षा दे रहे हैं. नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम. कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, नायम देह देह भाजा निर्लोके, इस मनुष्य जीवन का जो देह मिला है, कष्टान कामान, कष्टपूर्ण कार्य करने के लिए, कष्टान कामान न अर्हते, इट इज नॉट मीन्ड फॉर विडभुजाम. ये विडभुजाम मीन्स स्टूल ईटर. कौन है स्टूल ईटर? सुअर. वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि ये मनुष्य जीवन है मेरे पुत्रों, फादर इज टेलिंग टू सन, ये सुअरों की तरीके से इंद्रिय भोग के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है. तो किसने मिला है? तपो दिव्यम, अंडरगो डिवाइन ऑस्टेरिटीज. किस लिए? तपस्या के लिए मिला है. किसने तपस्या करना है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत. सत्वम सत्ता, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को शुद्ध करने के लिए मिला है. यस्मात, जिससे, उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम, इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलेगा. तू अनंतम, अनंतम मीन्स नेवर एंडिंग. ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम. हमारे पिताजी, हमारे किसी के पिताजी ने हमको ऐसा आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा जैसे ऋषभ दे रहे. अनफॉर्चुनेटली नो, जनरली मे बी सम एक्सेप्शन, इन जनरल अनफॉर्चुनेट हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, दे आर जस्ट अपोजिट. हे मेरे पुत्रों, ये जीवन अधिक से अधिक इंद्रिय भोग के लिए मिला है. मैं 50% कर पाया, मेरा बाकी 50% भी तुम करो और आगे बढ़ो. मैं केवल इतना कर पाया, तुम और आगे बढ़ो. आज की संस्कृति में अब हो रहा है, पिताजी बोलते हैं बेटा हम लोगों ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो बनाना कोई है ना कोई. दे आर एनकरेजिंग, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ बॉय यू आर. दिस इज अ सिविलाइजेशन कमिंग अप. सुअर बनाने की ट्रेनिंग है. टुडे सिविलाइजेशन इज नथिंग बट ट्रेनिंग इन टू बिकमिंग हॉर्स एंड डॉग्स. यू कैन एनालाइज, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. व्हाट एल्स दे हैव गॉट? आप चाहे टाई पहन करके और बड़ा अच्छा हो, ब्रीफकेस लेकर के और बड़ी कार में घूमे और बहुत बड़ा आपका बल्ला हो, पर आप उसमें जो काम कर रहे हैं वो इंद्रिय भोग, तो सुअर जो गटर में पड़ करके वो सुअरी के साथ जो भोग कर रहा है उससे कैसे उत्तम है? हाउ इज इट मोर एलिवेटेड देन दैट विच अ डॉग इज डूइंग इन आउटसाइड द स्ट्रीट? 10 dogs आर फाइटिंग फॉर हैविंग सेक्स विद अ बिच. इफ यू आर डूइंग विद अ टाई एंड पैंट, in your big big apartments under AC, the act is same. It's the same gut feeling of just sense and scratching sensation. That's all. How is it elevated? वो कैसे अच्छी है, क्या उसमें श्रेष्ठता है? वो कुत्ते को भी वही फीलिंग हो रही है ना उसके प्रति, कुत्ती के प्रति, जो आपको किसी मिस यूनिवर्स या कोई भी एक स्त्री के प्रति हो रही है. इट्स नथिंग मोर एलिवेटेड देन दैट. सो दिस सिविलाइजेशन इज नथिंग बट ए कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन. तो जो मनुष्य इस जीवन में कैट्स एंड डॉग की तरह जीता है, प्रकृति बोलती है डोंट वरी, नेक्स्ट बॉडी यू विल डेफिनेटली गेट द कैट्स एंड डॉग बॉडी. क्यों इतने इतना परेशान हो रहे हो? सी, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जज है और एक क्लर्क है कोर्ट में, तो गवर्नमेंट दोनों को फैसिलिटी अलग अलग देता है. जज को कार मिलेगी, घर मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी. क्यों डिफरेंस है ये उसकी सैलरी में और क्लर्क की सैलरी में? भले ही क्लर्क ज्यादा काम करता है, उसकी नौकरी 10 घंटे की होगी, जज जस्ट कम एक घंटे में काम करके चला जाएगा. तो उसको अधिक फैसिलिटी क्यों दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा? कौन बताएंगे? यस, he has got more responsibility, correct? That's why he has been given more facility. अगर वो जज अपनी responsibility पूरी ना करे, उसको कार दी है, वो कार को अपने घूमने में लगाए, तो क्या होगा? Facilities will be sacked, छीन ली जाएंगी. you are misusing the facilities. अपनी responsibility निभाने के लिए नहीं कर रहे हैं उसका use facilities का. Facilities will be sacked. उसी प्रकार से मनुष्य जीवन के अंदर में ज्यादा facility मिली है. We have been given this more developed brain by which we can discuss like what we are discussing today. This facility is not given to animals. They cannot come and discuss these issues. Their only issue is, where is the bitch? That is the only issue what they have. Whole day, morning to night, ahara nidra bhaya maithunam. No other topic can come. Lekin unfortunately, just see, aapke hostel mein, what are the subjects which are discussed among the students? I was 6 years in the hostel. I was surprised when I entered the hostel. Either studies or girls, there's only 2 subjects they have to discuss. So how are they more elevated than this street dogs? So, हमको ये मनुष्य जीवन मिला है कि हम ये जो चार जो ये जानवरों के कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए बना है, जिससे कि हम अपने ध्यान को, अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लगा सकें. ये जो बॉडी बॉडी में फंसे हुए हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल करके अपने धाम वापस जा सकें. इसके लिए हमको फैसिलिटी दी है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस फैसिलिटी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम सोफिस्टिकेटेड सेंस एंजॉयमेंट करेंगे. कुत्ता तो ऐसे ही, शेर तो ऐसे ही जंगल में मांस खा लेता है. हम 5-star होटल की मेज़नीन फ्लोर पर जाकर के वही 1 महीने पूरा सड़ा हुआ मांस रेफ्रिजरेटर में निकाल खाएंगे. वी आर मोर एडवांस्ड मिसयूजिंग. वो जानवर जो है सड़क पे सो जाएगा, हम लोग एसी में सोएंगे, डल्लब पे सोएंगे. एंड सो वी आर मिसयूजिंग अवर इंटेलिजेंस. दिस इंटेलिजेंस इज नॉट गिवन टू बिकम ए सोफिस्टिकेटेड एनिमल. दिस इंटेलिजेंस इज गिवन टू इंक्वायर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. दिस इज द एम ऑफ ह्यूमन बर्थ. अगर हम इसको मिसयूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? ये फैसिलिटी हमसे छीन ली जाएगी. यू एक्टेड लाइक ए कैट एंड डॉग इन ह्यूमन लाइफ, बिकम ए कैट एंड डॉग इन दिस लाइफ अगेन. दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज शास्त्रीय प्रमाण. सो जा सोचिए कहां जा रहे हैं हम लोग. व्हाट विल हैपन टू अस? डेथ किसी भी समय आ सकता है. हम लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, 10 साल बाद मैं ये करूंगा, फिर इतना बैंक बैलेंस करूंगा, फिर इतना बन जाऊंगा. 1 मिनट की गारंटी नहीं है और प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी है. Isn't it foolishness? वी हैव गॉट नो गारंटी एट ऑल. 1 मिनट की गारंटी नहीं है, लेकिन सारा समय सारा शक्ति लगाने जैसे पता नहीं ये कुछ जैसे रियल है, जैसे होने वाला है. क्या गारंटी? आप घर बना रहे, कितना समय रहेंगे? इनॉग्रेशन से पहले मर जाएंगे, क्या पता. There was one Rishi, Lomas Rishi. उनकी आयु बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़ी आयु थी उनकी, ब्रह्मा जैसी आयु थी उनकी, बहुत बड़ी, many lives. तो वो क्या थे? वो बिना कोई झोपड़ी बनाए हुए ऐसे ही गंगा नदी पे किनारे बैठ के भजन भगवान का हरि नाम लेते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो कई लोग आचार्य से बोलते थे कि आप एक कम से कम कुटिया तो बना लीजिए। तो बोलते थे मेरा थोड़ा सा जीवन है, कुटिया बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करूं, आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम टू परफेक्ट माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस इवन ए सिंगल मोमेंट। एंड हिज लाइफ वॉज सो मच। और हमारा जीवन आजकल वैसे भी कलयुग में मैक्सिमम लाइफ तो 80-90 से ऊपर तो किसी का है ही नहीं, और उसमें भी एक्सीडेंट्स और अननेचुरल डेथ और यानी कि वेरी वेरी अननेचुरल, वेरी वेरी स्थिर नहीं है कुछ भी। लेकिन हमारी प्लानिंग ऐसी है, इतना स्ट्रांग सब कुछ करेंगे अपनी मेटेरियल बेस में, जैसे कि ना जाने कितने कितने जन्मों यहां रहने वाले हैं, और जन्मों जन्मों रहना पड़ेगा जिस घर में अटैचमेंट है, लेकिन मनुष्य जीवन में नहीं। उस घर में बिल्ली बन के, उस घर में चूहा बन के, कॉकरोच बन के, यस यू विल लिव देयर बर्थ आफ्टर बर्थ बट मे नॉट बी लाइक ए ह्यूमन बींग दैट ओनर ऑफ दैट हाउस। ए कॉकरोच में आल्सो थिंक हिमसेल्फ द ओनर ऑफ दैट हाउस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो हम लोग कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग फॉर। बस सुबह उठते हैं, आज मेरा एक दिन है, अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मेडिकल कर रहा हूं, पढ़ो एग्जाम पास करो, फिर ये जस्ट अपनी आंखों को बंद किए हुए इमीडिएट देख रहे हैं, जैसे भीड़ अपनी आगे वाली भेड़ को देख ली, अरे भाई वो कतल खाने की लाइन है, भागो यहां से, ये आगे का नहीं देखना है, बस वही पिताजी ने बोला है पढ़ना है, जॉब लेना है, पैसा कमाना है, बस इससे आगे नहीं देखना। घोड़ा चलता है तो घोड़ों क्या करते हैं, ऐसे साइड में वो लगाए थे जिससे इधर का नहीं देखे। तो ऐसे हमारी सोसाइटी ने हमारी आंखों को, हमारी दृष्टि को ऐसे सीमित कर दिया है जस्ट। और वो जो मार्केटिंग वाले हैं और ये लोग जो है तो और बिल्कुल हमारी फोकस करते हैं, जैसे वो अर्जुन ने देखा ना वो पक्षी की केवल एक आंख, ऐसे बस पैसा ही देखना है, बस पैसा जहां देखो पैसा ही देखो, बस और कुछ नहीं, मिट्टी में पैसा, आकाश में पैसा, कैसे पैसा कमाना, कैसे पैसा कमाना, कैसे पैसा कमाना, होल डे एंड नाइट इज ओनली दिस बिजनेस। सो दिस इज ए सोसाइटल पॉलिसी व्हाट वी आर डूइंग। तो शुद्ध करने के लिए बना है सत्ता को, तो हमारी कॉन्शियसनेस वर्तमान में अशुद्ध है। जैसे ही हम इस संसार में इस शरीर के संपर्क, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हमारी जो चेतना है ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो मूवमेंट है उसका नाम क्यों दिया गया है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज नॉट ए सेक्युलर मूवमेंट कि ये हिंदुओं के लिए है, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। दिस इज जस्ट एक्सटर्नल, जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, शरीर के संबंध में धर्म बना दिए हैं। धर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, धर्म मतलब किसी भी चीज का वो गुण जो कभी उससे पृथक ना किया जा सके, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गुण है उसको धर्म बोलते हैं। अग्नि का धर्म क्या है, ऊष्मा देना, प्रकाश देना। क्या कभी आ सकता है कि अग्नि है और ठंडी है, हो सकता है अग्नि है लेकिन अंधकार है, वो उसके आधारभूत गुण है, कभी आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। नमक है लेकिन नमकीन नहीं है, तो फिर नमक कैसे कहलाएगा, वो नमक होने की, नमकीन होने की वजह से तो नमक कहलाता है। तो ऐसे ही धर्म मतलब आत्मा का वो गुण जो कभी उससे पृथक नहीं किया सकता, जो उसकी संवैधानिक स्थिति है, उसे धर्म कहते हैं, ना कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म। हिंदू धर्म तो क्या है, आपका जन्म आज हिंदू परिवार में, उसमें आपका धर्म हिंदू है, कल को मुस्लिम परिवार में जन्म होगा आपका धर्म मुस्लिम हो जाएगा, तो वो धर्म नहीं है। दैट इज नॉट रिलीजन, दैट इज जस्ट रेफरिंग टू दिस बॉडी बर्थ दैट विल चेंज। क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग हैं, धर्म परिवर्तन हो गया, मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, दैट मीन्स दैट वॉज नॉट देयर धर्म, एंड वॉट दे आर फॉलोइंग नाउ दैट इज ऑल्सो नॉट देयर धर्म। दैट विच चेंज इज कैनॉट बी धर्म। धर्म मतलब जो कोई बदल नहीं सकता है, जीव का वो गुण। तो वो गुण क्या है, दैट इज हर जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, ये उसका धर्म है। बिना सेवा के कोई जीव रह ही नहीं सकता, इसे कहते हैं धर्म, जो कभी उसे पतन नहीं किया। केवल बात यह है, हम वास्तव में, हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, वो वास्तविकता है, जिस स्थिति में हम आनंद से रहते हैं। लेकिन वो भूल करके हम सेवा करने कर रहे हैं, सेवा करने में विवश हो रहे हैं, पत्नी की, बच्चों की, समाज की, देश की। आप अभी सब जॉब के लिए जाएंगे, एप्लीकेशन ले लेकर के, प्लीज गिव अस जॉब, प्लीज गिव अस जॉब, दैट मीन्स यू विल सर्व योर बॉस। संसार लोग अनेक अनेक स्वामी बना रहे हैं संसार में, आई विल सर्व दिस, बिकॉज एवरी वन हैज टू सर्व, देयर इज नो ऑप्शन, एवरी वन हैज टू सर्व। तो दिस केवल चॉइस है सेलेक्टिंग द मास्टर. आइदर यू हैव टू सर्व कृष्णा गॉड, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल हैव टू सर्व माया इल्यूजरी एनर्जी, उसके एजेंट इन द फॉर्म ऑफ योर कंपनी बॉस, इन द फॉर्म ऑफ योर वाइफ, इन द फॉर्म ऑफ योर चिल्ड्रन, इन द फॉर्म ऑफ योर फादर मदर, इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमेटली योर सेंसेस. अल्टीमेटली एवरीबडी सर्विंग हिज सेंसेस. हम बोलते हैं माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अल्टीमेटली यू सी इट इज जस्ट फॉर माई सेंस एंजॉयमेंट, बिकॉज बाई सर्विंग द कंट्री आई फील एंजॉयमेंट, द सेंसेस फील एंजॉयमेंट. माइंड, मैंने कुछ देश की रक्षा किया, मेंटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स ऑल. तो यही ऑप्शन है हमारे पास, सर्विस वी हैव टू डू. लेकिन अगर आप इंद्रियों की सेवा करेंगे, जो सब कर रहे हैं हम, परिणाम असंतुष्ट रहेंगे. न तो कभी इंद्रियां संतुष्ट होंगी, न कभी आप संतुष्ट होंगे. कभी इंद्रियां आपको नहीं बोलेंगी नाउ आई एम सेटिस्फाइड, नाउ यू आर फ्री, नो मोर, डोंट नो नीड टू सर्व मी, नाउ यू आर फ्री. कभी होता है सर, आप कितना भी इंद्रिय, कितना भी सेक्स एंजॉयमेंट कर लीजिए, स्टिल यू विल हैव सेक्स डिजायर. इंद्रियों की मरते दम तक इनकी इच्छाएं बनी रहती है, कभी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती. आप सोचते हैं कि सेक्स एंजॉयमेंट कर लो फिर बस ये इच्छा चली जाएगी, किसी का असर नहीं हुआ. एक एक संप्रदाय है, अभी तो खत्म हो गया वो संप्रदाय, उनका थ्योरी था, क्या था, सेक्स टू सेल्वेशन, समथिंग लाइक दैट, काम से मुक्ति. सो आप खूब सेक्स करो तो सेक्स डिजायर हट जाएगी. तो ये जो मंकी और जैसे जो कुत्ते बिल्ली है तो खूब सेक्स करते हैं तो उनकी सब सेक्स डिजायर खत्म हो जाती है. व्हाट अ इडियोटिक प्रपोजिशन. ये अग्नि में पेट्रोल डालने की तरह से है, अग्नि में पेट्रोल डालने से कभी अग्नि घुसती, वो उसका ईंधन है, जितना डालेंगे उतना जलेगी. तो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति करने से कभी बुझाया नहीं आ सकता, उसको भगवान की सेवा में निवृत्त होकर के बुझाया जा सकता है. तो हम वर्तमान में दूषित स्थिति में हैं, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस में, और ओरिजिनल कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये हमारी स्वाभाविक चेतना है. लेकिन अभी इसको हम भूल गए हैं और भूल करके अलग अलग प्रकार की चेतनाओं में है. तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स, भगवद गीता मीन्स हाउ टू प्यूरिफाई दिस कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल. ये चेतना को दोबारा से कैसे शुद्ध करना है. पानी आकाश में से गिर रहा है तो बिल्कुल साफ होता है, जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आता है तो मलिन हो जाता है. अब फिर दोबारा से उस पानी को फिल्टर करके या अलग अलग विधि से उसको दोबारा से साफ कर दिया, साफ हो गया. ऐसे हमारी चेतना वर्तमान में जैसे ही हम इस प्रकृति के संपर्क में आए दूषित हो गई है, इंद्रिय भोग की वासनाओं से दूषित हो गई है. अभी हमें स्पिरिचुअल लाइफ मतलब उसको शुद्ध करना है, अगेन अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना है. एंड ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, वी आर ऑलवेज हैप्पी, दैट इज द ओनली हैप्पीनेस ऑफ द सोल. सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर, 9:30. तो हमने देखा आज कि हम कैसे, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन कैसे शरीर बंधन में बने हैं, क्यों बने हैं. कृष्णा भूलिया से जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे. भगवान कृष्ण को भूल करके जैसे जीव भोगवांछा करता है, भोग करने की इच्छा करता है, निकटस्थ माया, पास में खड़ी है माया, भगवान की वो छाया की तरह से झपटिया धरे, झपट लेती है. अभी हम झपट में है, कंट्रोल्ड बाय माया. सोच रहे हैं हम लोग खुद है, मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वी आर हैविली कंट्रोल्ड बाय दिस गुणा माया. तो इस तरह से हम आ गए हैं यहां और इसलिए दुख भोग रहे हैं. सबसे बड़े चार दुख कौन से हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसके अलावा और तीन कैटेगरी हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश. मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम दिस बॉडी एंड माइंड, मिजरीज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एनिटीज, एंड मिजरीज अराइजिंग बिकॉज ऑफ नेचर. क्या हम में से कोई है या कोई भी संसार में जो इन तीनों मिजरीज से बचा हुआ है? कोई नहीं. हमारा आधुनिकीकरण कितना ही प्रयास हम कर ले, हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही अधिक प्रकृति के द्वारा पनिष्ठ हो रहे हैं. प्लीज mark this statement, the more we try to exploit material nature for our sense gratification, द मोर वी आर पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, मोर वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल मटेरियल नेचर, मोर वी आर गेटिंग पनिश्ड बाय इट। इसलिए आज आदमी की समस्या बढ़ रही है। बारिश टाइम पे नहीं है, ज्यादा है, कम है, सब तरफ प्रॉब्लम्स, दिस मटेरियल प्रॉब्लम्स। क्यों? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल प्रकृति। प्रकृति यू कैन नॉट कंट्रोल, इट्स वेरी पावरफुल। वॉट यू कैन डू? पागलपन है सोच रहे हैं कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर लेंगे। ह्यूमन बींग इज थिंकिंग साइंटिस्ट। बारिश नहीं होती कोई बात नहीं, हम आर्टिफिशियल बारिश लेके आएंगे। क्या आर्टिफिशियल बारिश लेके आओगे? यू विल क्रिएट अनदर 10 न्यू प्रॉब्लम्स एज यू आर डूइंग। सो दैट इज अ रूट कॉज। हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, इस जगत को भोगना चाहते हैं। इसको चेंज करना है, इस कॉन्शियसनेस को समझना है कि ये विष पीने की तरह से है, इस जगत को भोग करना वास्तविकता है। वी शुड रिवर्ट, वी शुड अगेन रिवाइव अवर ओरिजिनल लव फॉर गॉड। भगवान के प्रति जो हमारा स्वाभाविक प्रेम जो ढका हुआ है, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा जो अभी हम लोग आवृत हो गई है, उसको पुनः जागृत करना है, रिवाइव करना है। एंड देन यू विल बी हैप्पी, नॉट जस्ट आफ्टर दिस बर्थ बट इन दिस लाइफ इटसेल्फ यू विल फील दैट। That's why we are saying our process is very practical. You can experiment it. If you follow the guidelines, you will see how you are improving, how you are becoming happy. Hare Krishna. Is vishay mein kisi ka prashna? Koi prashna hai kisi ka? Kanji. भगवान जो है वो एक जज की तरह से है, उपद्रष्टा अनुमंता परमात्मा, ही इज लाइक ए विटनेस एंड अनुमंता, सैंक्शन गिविंग अथॉरिटी। तो वो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं और हमारी इच्छाओं को देख रहे हैं। हमारी इच्छाओं के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार प्रकृति के द्वारा वो हमको वो फल मिलता जाता है। वो खुद इसमें हमारे को अच्छा और बुरा में वो जिम्मेदार नहीं है। ना दत्ते कसचित पापम न च सुकृतम विभुम, अज्ञानेन आवृतम अज्ञानेन आवृतम तेन मुह्यंती जंतव। लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स इन भगवद्गीता, मैं किसी के अच्छे बुरे का जिम्मेदार नहीं हूं। वो जीव खुद अज्ञान से आवृत होकर के अच्छा और बुरा अपना क्रिएट कर रहा है। ही इज लाइक ए जज। लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे अभी आपकी शरण में आना है, देन कृष्ण मेक्स ऑल अरेंजमेंट टू ग्रेजुअली ब्रिंग यू बैक टू हिम। अदरवाइज इट इज गवर्न बाय कृष्णा परमात्मा, नॉट एग्जैक्टली कृष्णा, कृष्णा एक्सपेंशन परमात्मा। कृष्णा हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उनके एक्सपेंशन परमात्मा जो है वो भी उनके एक विस्तार है, दैट्स ऑल। कृष्णा हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड, ओनली उनके एक्सपेंशन जो है परमात्मा, वो जज की तरह से जो जो करता है उसको वो परिणाम मिलता है, दैट्स ऑल, बाय गुणास इट्स हैपनिंग, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन जब कोई जीव भगवान की शरण में आना चाहता है, तब भगवान उसको सब ज्ञान देते हैं, फैसिलिटी देते हैं हाउ टू कम बैक। यस, माइक 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 नहीं आया है? नहीं, ओके। ये उस धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे थे और वहां पर संजय, उनके गुरु कौन थे संजय के? व्यासदेव। व्यासदेव जी कृपा से संजय को शक्ति प्रदान की गई थी कि वो उस युद्ध को धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे देखे, और व्यासदेव जी ने इसको लिखा, संजय ने इसको सुनाया, एंड व्यासदेव जी रोट इट डाउन। हाँ जी, यस, ऑल वेदिक लिटरेचर रिटन बाय व्यासदेव। यस, रामायण इज रिटन बाई वाल्मीकि, चार वेद, वेदांत, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, दीज आर रिटन बाई, एंड पुराणास, दीज आर रिटन बाई व्यासदेव. यस, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है. आत्मा कोई स्वरूप या आकार होता है क्या? तो देखिए, अभी आपका ये टी शर्ट है ना, तो इस टी शर्ट का एक आकार है ना, इसमें भी दो हाथ हैं, तो वो उसमें दो हाथ क्यों बनाए गए? क्योंकि वो आपके शरीर के ऊपर ढकने वाला है, तो शरीर का आकार है इसलिए उसका आकार हुआ, नहीं तो वो कपड़ा था, उसका कोई दो हाथ नहीं थे. तो इस भौतिक जगत में जितने भी शरीर हैं, उन सबका कोई ना कोई रूप है. जैसे ही वो आत्मा उससे निकलता है, दोबारा से शरीर बिना रूप का हो जाता है, सड़ जाती है बॉडी, और उससे पहले भी वो बिना रूप का ही था. जैसे आत्मा अंदर प्रवेश करती है, धीरे रूप बनना शुरू होता है, हाथ बनना शुरू होता है, या जो भी जानवर का जो जो. सो इवन बाई लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड कि जब इस शरीर को ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज का हर का रूप है, तो जो जो चीज अंदर है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बन रही है, वाई इट शुड नॉट हैव ए फॉर्म. और हम शास्त्रों को देखें, जैसे बताया कि नारद पंचरात्र से ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश ऋषिकेण मतलब बाय योर सेंसेस, कि जब समुपाधि से मुक्त जाते हैं हम लोग, when we are liberated, when we are come out of this body consciousness, bodily platform, तब उसके बारे में बताया गया उस स्थिति में हमें क्या करना है, what is the eternal position, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषि ऋषिकेश, उनकी सेवा करना. तो यानी कि हमारी नित्य शरीर में भी हमारी इंद्रियां होती हैं, तभी तो भगवान की सेवा करते हैं हम. सो वी हैव सोल हैज इटर्नल फॉर्म. अभी वो वर्तमान में जो है वो ढका हुआ है इस भौतिक आवरण से, शरीर से. भगवान की सेवा से, दैट इज द होल पॉइंट. आत्मा की खुराक है भगवान की सेवा. तो ये भौतिक जगत का सृजन क्यों हुआ है? यस, तो हम यहां क्यों आए? वही हमने आप अच्छा लेट आए थे आज, सो यू शुड कम ऑन टाइम. तो हम पहले बताए, हम यहां भौतिक जगत में क्यों आते हैं? जो हमारे अंदर इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा होती है, और भगवान हमारी उस भौतिक जगत की भोग करने की हमारी इच्छा को फैसिलिटेट करने के लिए भौतिक जगत का निर्माण करते हैं और ये शरीर देते हैं. आपको यदि समुद्र के अंदर जाना है डाइविंग के लिए, तो क्या आप अपने इस शरीर से जा सकते हैं? आपको एक स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर रहने के लिए आपको एक स्विमिंग सूट की जरूरत है. उसी प्रकार से जब आत्मा इस भौतिक जगत का भोग करना चाहती है, तो आत्मा नहीं कर सकती है जब तक उसको एक वाया मीडियम ना दिया जाए. तो ये शरीर वो वाया मीडियम है जिसके द्वारा आत्मा इस भौतिक जगत का भोग करने की जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करती है. भगवान की इच्छा नहीं है वो, लेकिन भगवान जब हम हट करते हैं, देन कृष्णा अरेंजेस. बच्चे को जिद हो रही है, नहीं मुझे कार चलानी है, नहीं मुझे गुड्डी गुड़िया से खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है. अब माँ बाप जानते हैं कि बच्चा नहीं बनाता, लेकिन जिद कर रहा है, तो ठीक है खिलौना लेके देते हैं, खिलौना खेलो. अब बच्चे खेल रहे हैं, अभी मैं खाना बना रहा हूँ, मैं गुड्डे गुड़िया, शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. अब जब वास्तव में भूख लगेगी जब, क्योंकि खिलौने से भूख तो मिटेगी नहीं, भले ही आपकी छोटी छोटी कढ़ाइयाँ होंगी, आप उसमें सब बना लेंगे खेल खेल में खाना, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा ना उससे. तो जब भूख लगेगी तो फिर दोबारा माँ की याद आएगी, माँ भूख लगी है, अभी खेल खत्म हो गया, अभी रख दो खेल साथ में, अभी आ जाओ, अभी खाना खा लो. तो ऐसे ही हम लोग जब भगवान को भूल कर खेल खेलना चाहते हैं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा में आई, ठीक है, एक खिलौना संसार बना दिया, दिस इज लाइक ए टॉय, खिलौना संसार। अभी हम सोचे मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, अरे क्या बन गए, ये मैंने खरीद लिया, क्या खरीद लिया, ये जमीन मेरी है, किसकी जमीन है, तुम चले जाओगे यहां से, जमीन यही रह जाएगी, तुम्हारी जमीन कैसे, तुम्हारे आने से पहले भी जमीन यही थी, तुम्हारे जाने के बाद भी जमीन है, बट यू आर थिंकिंग माई लैंड, आई एम इंडियन, एज इफ यू विल टेक इंडिया विद यू, सो दिस इज एन इल्यूजन, लेकिन एज ए खेल हम खेल रहे हैं, मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं भोगता हूं, लाइक दैट। तो खेल खेलने के बाद 84 लाख प्रकार के शरीरों में खेल खेलने के बाद जब थक जाते हैं, भूख लगती है, वास्तव में मजा नहीं आ रहा, देन वी रिटर्न बैक टू गॉड। जैसे बच्चा, माँ अभी भूख लगी है अभी खेल बंद करो, अभी घर आ जाओ, तो ऐसे ही अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब भूख लगती है वास्तव में कि भगवान अभी चाहिए, अभी सब खेल में मजा नहीं आया, अभी भगवान समझ गया, सॉरी नहीं चाहिए अभी, देन कृष्ण से ओके नाउ सरेंडर टू मी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अंत आंसर पाप यदि मोक्ष। Yes, any other question? Yes. Last question. भगवत गीता का? हाँ आदि मानव थे, अच्छा आपको ये ये शुभ शुभ तो मैं नहीं कर सकता, ये दुर्विचार कहाँ से आया, ये जो आदि मानव थे हम लोग, यानी अभी हम प्रगति कर रहे हैं ना, तो ये जो भगवद्गीता 5-6 साल पहले लिखी, तो जो आदि मानव था, जो आज से तो पिछड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए ना 5-6 वर्ष पहले, तो ये भगवद्गीता ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है या आपके क्या आज का जो ज्ञान है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो नहीं लिखी, वो बात दूसरी है, आपके अनुसार हम प्रगति कर रहे हैं ना, वी आर ऑन दिस स्लोप, हम आदि मानव थे, हम पिछड़े हुए थे, कुछ नहीं जानते थे, अभी धीरे जानना शुरू किए और आज हम बेस्ट पोजीशन में हैं हिस्ट्री के कंपैरिजन में। आपका प्रश्न कुछ भी हो लेकिन पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने बोला हम पहले आदि मानव थे, आपका कहने का मतलब यह हुआ, निचोड़ क्या निकला उसका, कि हम आदि मानव थे यानी कि अभी हम प्रगति कर रहे हैं, यानी कि आज तक जितना हिस्ट्री में पीछे जाएंगे उतना ही पिछड़ापन होना चाहिए ना, आपका प्रश्न कुछ भी हो आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर उसमें नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर देने में क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं पूछ रहा हूं, जो आपका उत्तर आएगा उससे रिलेटेड आएगा, आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार जितना हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान पिछड़ा हुआ होना चाहिए ना, अगर हम पहले आदि मानव से हम जानवरों से आए हैं तो जितना हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान पिछड़ा हुआ होना चाहिए ना, जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर देने में प्रॉब्लम है आपको, आपके स्टेटमेंट के अनुसार जितना हम पीछे जाएंगे हमारा ज्ञान उतना पिछड़ा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट्स माय सिंपल स्टेटमेंट, व्हाई यू आर गोइंग हियर एंड देयर, अगर हम आदि मानव थे, अगर हम जानवर थे, हमारा ज्ञान कम था कि नहीं था पहले, कम था ना, जितना हिस्ट्री पीछे आएंगे उतना कम था ना, तो ये भगवत गीता पुराना ज्ञान है ना, 5-4 साल पुराना है ना, भगवत गीता ज्ञान तो ये आजकल का जो ज्ञान है, हम कह रहे हैं साइंटिस्ट लोग आज आत्मा को भी नहीं समझ पाए हैं और भगवत गीता में आत्मा तो ABCD है, तो ये आज के ज्ञान से ज्यादा उन्नत है कि पिछड़ा हुआ है, जस्ट आंसर, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट जगमन स्पीच, हैं जी, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूं आप उसका उत्तर दीजिए, आप इतना सकपका क्यों रहे हैं, मैं आपसे जो बोल रहा हूं उसका उत्तर देने में क्या प्रॉब्लम है, भगवदगीता का ज्ञान आज के वर्तमान ज्ञान से ज्यादा उन्नत है कि पिछड़ा हुआ है, उन्नत है, तो फिर आपकी थ्योरी गलत हुई कि नहीं हुई, कि हम आदि मानव से आए हैं, अगर हम आदि मानव से आए होते तो हमारा ज्ञान कम डेवलप होना चाहिए था ना, ये सिंपल लॉजिक है, इसको स्वीकार करने में क्या मुश्किल है आपको, आप ये लॉजिक स्वीकार करते हैं, तो पहले ये समझिए कि हम आदि मानव से नहीं आए हैं, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, वी आर डिग्रेडिंग, यस नाउ गो अहेड विद योर क्वेश्चन, मिल गया ना जवाब, हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न, तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। डोंट टेक इट, बट दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन दैट यू आर डूइंग दैट दिस इज ऑल भगवत, दिस आर बैकवर्ड। वी आर नॉट बैकवर्ड, वी आर लाइक एनिमल्स। आई एम सेइंग दैट दिस इज कैट एंड डॉग सिविलाइजेशन एंड दिस इज सच अ हाई सिविलाइजेशन। वी आर डिग्रेडिंग नाउ, वी आर नॉट एडवांसिंग, वी आर डिग्रेडिंग नाउ।